कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तृतीय जन अपना दोष दिखने लग जाएगा, इस दोष के कारण हमारा भजन नहीं हो रहा है। जब दिखना आरंभ हो जाएगा तब ये करीब करीब मध्यम अधिकारी में आता है। तो जब ऐसा होगा तब वो देखेगा कि हमारा सहारा कुछ भी नहीं, मैं तो अत्यंत अयोग्य, निराश्रय, पाखंडी, गंभीर, जितने अवगुण हैं संसार के हमारे अंदर में पढ़ने लगेगा और उसे अनुभव होगा। तब वो जब एक आदमी समझ रहा है जब मैं डूब रहा हूं पानी में, तब तो उसको सहारा की जरूरत है ना, पहले ही सहारा की जरूरत है, डूब नहीं रहा है तो सहारा की क्या जरूरत। इसलिए कोई यदि व्यक्ति यह समझता है कि मैं डूब रहा हूं तो जहां उसको थोड़ा सा भी तिनके का भी सहारा मिलता है तो उसको, उसी तरह से जो यदि कोई व्यक्ति समझता है मैं सर्व गुणों से ही, मैं सब प्रकार से अयोग्य, मैं बहुत पापिष्ट, मैं कामी, क्रोधी, लोभी, भोगी, सब तब हमारा सहारा नहीं है, भजन करने का हमारा कोई भी अवलंबन नहीं है। तब निराशय होकर के तब भगवान के चरणों में शरणागत होता है, गुरु वैष्णव के चरणों में शरणागत। उसके पहले जो शरणागत होते हैं वो ठीक शरणागत नहीं, ऐसा समझने के बाद में तब शरणागत। अच्छा, ये शरणागति कैसे होगी? वो जो बतलाया गया तिना दपी सुनी चेन करो रिव सफी सुना, तो ये तिना दपी सुनीच में ये है, उसका आंशिक ये चार है ना, चारों में से ये पहला। जब पहला आएगा तिना दपी सुनीच, तो सुनीच के समय में यदि थोड़ा सा भी उसका अंश किसी में आया सुनीच होगा, तो ये नीचता क्या है वो अपने आप उपलब्धि कर, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं संसार में आसक्त हूं, मैं बड़ा दुर्वचन बोलने वाला, ये सब जितने दुर्गुण हैं उसको उपलब्धि बिना दीप समझ के से, तभी तो वो दिनहीन होगा ना, तो होगा क्या वो दीनहीन कहां पर होगा? जो सबसे बड़ा वस्तु है भगवान, अत्यंत दीनहीन उनको चरण में होकर के शरणागत होने के लिए प्रार्थना करें। इसलिए अब तक हम लोग जितना कहा भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया ऐसे ही भाव में दिया और लेकर के भगवान के चरणों में शरणागत कैन तपन यही सब बुरी मुझे की उपलब्धि। यही उपलब्धिटा, ये उपलब्धि नरोत्तम ठाकुर की का, यही उपलब्धि भक्ति विनोद ठाकुर, यही भूषण दास, माधवेन्द्रपुरी पाद, ये सब उपलब्धि का पूरा उपलब्धि। ठीक ठीक है, हम लोग अभी नहीं उपलब्धि कर, हम ही एक पिछु आछी ওরা নিজেকে মুক্ত কোনোদিন মনে করে, ওরা মুক্ত মনে করে মুক্ত করে মনে না, জানন্তে এও জানন, ওই সে বিমুক্ত হয়েছে। যারা মনে করে যে আমি জানি, আমি জানি, কিছুই জানি, আর যে বলে যে আমি কিছুই জানি না তাহলে উপলব্ধি করে বলছে, তাহলে কিছুর একটা ধারণা আছে, কিছু একটা ধারণা। हम लोगों को अभी यथार्थ उपलब्धि नहीं होती, जो हम दीन इसीलिए क्रोध होता है, एक आदमी समझ रहा है कि मैं बहुत दरिद्र हूं, हमारे पास में कोई शक्ति नहीं, हमको अभी पीट देगा तो उसको क्रोध होगा, क्रोध होगा उन्हें सभी दबा देगा, जब मैं तो दिन अभी कुछ करेंगे तो और थपड़ना, इसलिए उसको नहीं होगा। आज जिसको कुछ है अभी ऐंठ है वो ऐसा था, इसलिए इन लोगों में यथार्थ उपलब्धि, मैं दीनहीन क्षुद्र हूं, इसलिए यदि कहो तो ये कपटी हो जाए, ये कपटी नहीं, ये सब सच में अनुभव करके कह रहे। हम लोग इस स्थिति में अभी नहीं है जो सच सच उपलब्धि करते थे, ऐसा अभी छिपाने की चेष्टा कर, कुछ यदि मांग भी लिया ऐसा कुछ तो छिपाएंगे, जब तक छिपाएंगे जब तक कि हम अच्छी तरह से मैं चेष्टा कर लेंगे, जब नहीं छिपेगा तो अभी सब छिपाएंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी यमुना स्तोत्र, ये यमुनाचार्य मुक्त महापुरुष हैं, अलवर कहलाते हैं, अलवर माने सिद्ध महापुरुष, तब ये कह अम्बर जादव क्षुद्र चलमति असूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो रक्षण पर निशंसा पापिष्ट कथम अहम अमितो दुख जलदे अपारा दुपीर्ण तव परिचरेयम कथम परिचरेयो परिचरेयम चरणयो अमित चंचल मत, मैं चंचल मती, मैं चंचल भगवान का भजन में मन नहीं लगता, अनुभव करके कर चंचल मत, कहां पर मती है कहते हैं बाधक एक हो सर्वेंद्रिय दुर्बल खीन कलेव भोगाभावे दुखित भोगाभाव मैंने क्या दांत टूट गया है, चना चिबा नहीं सकता तो चना दे करके लोग होता है, रसगुल्ला खाएंगे तो डायबिटीज है खा नहीं सकते, यदि रसगुल्ला खाया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी मरेगी, उसी तरह से तेल में के जो भाजे हैं ना मिर्च और नमक के साथ में वो खाएंगे, खाने की खूब लालसा हो रही है, उसको तवे पर भाजेंगे गरम गरम खाएंगे और वो खाते ही पेट तो खराब है, उदरी रोग हो गया है, जल जमने लगा है पेट में, अब मरने वाले हैं तो वो खाएंगे तो भी कल मरने वाले थे आज भी मर गए, खा नहीं सकते, इसलिए भोगा भावे दुखी तम तो भोग करने की इच्छा है, खाने की पहनने की ये सब, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं उसी को दिया अमित चंचलमती, चंचलमती अभी संसार का ये काम करो, अभी रुपया पैसा संग्रह करो, ये करू वो करू सब हजार तरह के काम, और कभी थोड़ी सी इच्छा होती है जो भगवान का भजन करें, अच्छा तो भगवान का भजन पीछे कर पहले इसको कर, ऐसे अभी भी हम लोगों के यहां जो अनावश्यक काम है उसको कर्तव्य मांग, भगवान का भजन करना है ना, अच्छा तो पहले पहले खाना खाने हो आए पेशाब उशाब कराए, अच्छा इसके बाद में भजन कर, तो ये हो गया तो तब भूख लगी है तो कहे थोड़ा सा भी प्रसाद पा लिया थोड़ा सा जल पान कर तब इसके बाद में, इतने में कुछ जल पान कर लिया तो थोड़ा सा आलस से आने लगा, अच्छा तो थोड़ा सा भी शाम कर इसके बाद में जब उठ करके, इतने में दो आदमी अच्छा तो उनसे बातचीत कर लो तो भजन कर, इसके बाद में जब वो आदमी चला गया ना तब फिर कुछ लग गया काम, बस ऐसे ही करते करते भजन, इसलिए चंचल मत अमर जाद क्षुद्र अति अमर जान, मर्यादाओं को सबको तोड़ दिया है, सच की मर्यादा सच्चरित्रता की मर्यादा और जितनी चीज की कपटता, सरलता की मर्यादा, सबकी मर्यादा को तोड़ दिया और मर जाएगा। असुआ प्रसव सदाम, असुआ असुआ मैंने दूसरे को उत्कर्ष देकर और मनी मन मरते हैं और उसकी यात्रा भंग करते हुए जा रहा है तो अपना नाक काट करके दरवाजे पर खड़ा हो गया, किसलिए काट दिया जी उसकी यात्रा भंग। ऐसा ऐसा होता है असुआ असुया में दूसरे का उत्कर्ष देकर के हमारे हृदय में दाह ईर्ष्या जो होती है, असहिष्णुता होती है, वो असुआ हमारे अंदर में हमसे कोई किसी विषय में न बढ़ जाए। पापिष्ट, पापिष्ट माने क्या? पाप में ही, पाप ही हमारा इष्ट हो गया है, पाप से ही हमारा काम है, ये हमारा इष्ट। जैसे इष्ट कोई अच्छी चीज, इष्ट भगवान होते हैं ना, तो उनका पाप ही इष्ट हो,
पापियों में श्रेष्ठ बड़ा पाप,
वही एक ही नहीं। पाप ही है इष्ट, कृतघ्न, कोई उपकार किया उसको काट देना, कृतघ्न काटना माने क्या? नहीं मानना, उसका विपरीत करना। यदि हमारे लिए उपकार किया तो इसका उपकार करना चाहिए, नहीं मानना उपकार का, माता पिता का उपकार नहीं मानना, गुरुजनों का उपकार नहीं मानना, राजा का उपकार नहीं मानना, ये सब जितने उपकार हैं, माता पिता, ऐसा कौन व्यक्ति है जो माता पिता का ऋण हो, किंतु उनके ऋण को नहीं मानना, ये भी गुरु जी का सबसे अधिक उपकारी है। यदि गुरु और शिष्य का संबंध हुआ तब तो, अभी हुआ ना तब तो फिर क्या हो? वो समझे जैसे हाँ मैं गुरु जी का ऋणी हूं आभारी, और नहीं तो मानेगा जैसे समान अंतर, समान अंतर, वो भी एक हम भी एक, तो ऐसा नहीं। इसलिए कृतज्ञ मैं कृतज्ञ, गुरु वैष्णव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, गुरु जी वैष्णव ने हमारे लिए क्या किया, किसने हमारे लिए किया, जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से अपने आप मुझसे हो गया, किसी कारण कोई कृतज्ञ मानी, मानी माने अभिमानी, संसार के जितने भी अभिमान के कारण है उन सबको उससे अभिमान हो गया, धन का है, विद्या का, उच्च कुल में जन्म का, सौंदर्य का, विद्या का, ये सब अपनी बुद्धि का, निशंस, निशंस माने क्या?
उत्ताचारी,
निशंस नहीं माने मनुष्य को काटने, जिसमें मनुष्यत्व है उस सबको काटते, मनुष्यत्व ही को काटते, छेद, संस माने छेद काट, मनुष्यत्व को एकदम काट देना, ये निशंस। और ज्ञानी किस चीज में ज्ञानी? वंचने ज्ञान, किसी को वंचन करने में बड़े ज्ञानी, ऐसे बातचीत करेंगे झूठ बात को भी सत्य कह देंगे, इसमें बड़े दक्ष हैं, चतुर, बात को छिपाने में, कपटता करने में, धूर्तता करने में, जो हमने किया वही सब ठीक है, इस विषय में बड़े ज्ञानी, वंचने आत्मज्ञान, भक्ति गुण ठाकुर दूसरे को नहीं कर रहे, अपने को कर रहे, सब अपने को। ये सब दुर्गुण हमारे अंदर में है। काम वश ख्याति सदा हो और कामनाओं के बस में सब समय हूं, एहन दुर्जन है ऐसे दुर्जन हो करके, ए दुख जलधि बोए ऐसे दुख का जो अथाह अनंत दुष्पार तट रहित जो समुद्र है उसमें हम चल रहे हैं। बोए बोए मैंने बह जा रहा हूं, बहा जा रहा कैसे बह रहा हूं, धारा में पड़ करके बह रहा हूं। चलती की संसार सागर, संसार सागर में जन्म और मृत्यु के प्रवाह में चल रहा। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये संसार रूपी संसार सागर में हम लोग ऐसे बह रहे हैं, जन्म मरने के नहीं मालूम होता है,
है?
देख रहे हैं। उसमें जो बुद्धिमान है वो तो समझ जाएंगे, जैसे पार होना चाहिए उसके लिए बड़ा दुखी होगा और समय भी बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा समय रह गया है, शाम हो गई है। वो श्लोक क्या दिन पढ़ रहे थे, बिना परीक्षा ये वो शाम हो गई। किस चीज का शाम हो गया, हमारा जीवन रूपी सिद्धि के लिए वो अब ये शाम माने हमारा इतना कोटि कोटि जन्म गया है उसकी शाम है। इसमें हमने अपना मंगल नहीं कर दिया। अब कितना दिन है अनंत काल में से, अब थोड़ा सा रह गया है, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, किसी का एक दिन, किसी का एक दिन भी नहीं, कोई ठीक नहीं है जीवन का। और हम लोग आराम के साथ में चलिए भवान बुद्धि या भवबुद्धि, संसार सागर अनंत है, पार हो वह निरवधि, मैं कैसे जल्दी से जल्दी इसको पार होऊंगा, तो पद सेवा मिले, कैसे आपके चरणों की सेवा मिलेगी, मैं कैसे भव सागर को पार कर जाऊंगा। इसलिए आदमी भगवान के चरणों में शरण। तो हम लोग ऐसा करके और समझ करके आए हैं कि नहीं, उपलब्धि कुछ है कि नहीं, इनको उपलब्धि हो गई इसलिए इनको हम मुक्त कर रहे हैं। हम लोगों को उपलब्धि नहीं, हम लोग अनुमान कर रहे हैं। अनुमान माने वो
कहते हैं कौन
भक्ति पहले
आरोप,
आरोप वो हमारे पीछे कौन है, नौका में चढ़ गया है
क्या?
ऐसे हम लोग आरोप कर रहे हैं किंतु ये पता नहीं है ये सचमुच में इसमें हम पड़े हुए हैं। क्यों, माया की, माया के द्वारा हमारी अज्ञानता से समझने। एक बकरी को या एक भेड़ को बलि देने के लिए ले जा रहा है एक व्यक्ति ना, और हाथ में कुछ घास रखा और घास ऐसे दिखला रहा है और उसके मैं भें करता हुआ वो चलता है और उसको ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है, अभी उसका अंतिम समय है, अभी ले जाएगा पकड़ करके उसे हलाल कर देगा, किंतु उसको मालूम नहीं, वो देख रहा है हरी घास और बड़े प्रेम के साथ में खाने के लिए दौड़ रहा है, उसको ये सब का पता नहीं। हम लोगों का भी ऐसा ही है, माया हरी घास निकला है, हरी घास में निकला यही संसार का जो विषय है, हरा घास है निकला रही है। और सोच रहे हैं कि ये घास खाना ही हमारे जीवन का सबसे प्रथम और प्रधान कर्तव्य है, यदि वो जल्दी से घास खाना छोड़ करके पीछे भाग करके मुड़ करके भग जाती और ये पकड़ नहीं पाता तब तो एक प्रकार से उद्धार हो जाता, किंतु वो तो आसक्त होकर के उसी के घास खाने में लगी, किंतु हम लोगों को ये पता है। ऐसे ही हम लोगों देह आराम था, देह में और सब कुछ नहीं था, देह में आराम क्या क्या सब ये संसार के पास है, एकांतिक रूप में भगवान के तरफ में
अलग है,
इसलिए हम लोगों का समान नहीं है। कोई थोड़ी चेष्टा करता है, कोई उससे भी कम, उससे भी कम, कोई को हो रहा है नौ। और जहां उपलब्धि इस बात की होती ना, वो तो हाय हाय करते हुए भगवान के चरणों का कहां पर हमको सहारा मिल रहा है। अभी कोई हम लोगों को मारने के लिए आए तो हम किसका सहारा लें। अभी जो इसमें बलवान है, बुद्धिमान है, उसका हम सहारा लें। अच्छा जाकर के उनको बुला लाओ, उनको बुला लाओ पहन। किंतु असल में सहारा कौन है? प्रभु। उनका सहारा हम लेते हैं किंतु नहीं ले पाते हैं, और न लेने की जरूरत अभी होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो दुख है संसार का थोड़ा बहुत वो दूर हो जाए, हमारे सुख की वस्तुएं मिल जाए, बस दुख नहीं। और जिनको सब कुछ में ऐसा हो गया वही वैराग्यमान वैराग्य हो जाए और भगवान का चरणों का शरणागत हो जाता है। तो ये हो गया, शरणागत हुआ। कैसे हुआ? अमानित्व मान, क्या मान होगा? हमारे अंदर में ये सब दुर्गुण भरे पड़े हैं, इसलिए तो भगवान के शरणागत। हम लोगों को भी ऐसे ही पक्के रूप में भगवान के चरणों का शरण। हम भक्तों का मान देने के संबंध में कहते हैं कब देगा, उसके लिए वहीं पर जामुन भावावली में भक्त विनोद ठाकुर जी का, तव दास्य सुखैक संगिनान भवनेश्वपि कीट जन्म में इतरा वसाथेषु माश्म भूदपि जन्म चतुर्मुखात्मना। इसका साधारण अर्थ, तव दास्य सुखैक संगिनान, आपकी सेवा करते करते जो सेवा सुख में मग्न है, तत्पर है, ऐसे भक्तों के घर में भवनेशु त्वपि कीट जन्म, आपके दास्य भाव में अर्थात आपकी सेवा करते करते जो लोग आपके जन्म में और आनंद में है, आपकी कथा में, आपके नाम में, आपकी सेवा में, ऐसे भक्तों के घर में यदि हमारा मृत्यु भी हो जाए, इतना दुर्गुण है हमारे ऊपर वाला, और इतना दुर्गुण होते हुए प्रभु अब मैं आपको शरणागत हूं। प्रभु ने कहा अच्छा बर मांगो क्या चाहते, प्रभु मैंने इतना पाप किया, ये सब हमारा तो जन्म होगा ही, तो जन्म हो तो कहां हो, तो वही कहते हैं भक्त गृह जन्म हो मो कीट जन्म हो जथा दुआ दास, वैमुख जन्म ब्रह्म जन्म। यदि जन्म हमारा हो तो कहां हो, आपके जो सेवक वर्ग हैं उनके घरों में मैं कीड़े मकोड़े बिल्ली कुत्ते जो कुछ भी हो मैं उनके घर में, तो उससे लाभ क्या होगा, कभी ना कभी खा करके कुछ, यदि जोर से कीर्तन करेंगे तो उनका कीर्तन सुन, यदि हरि कथा हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ हमारे, यदि और कुछ नहीं होगा तो वो चलेंगे तो उनकी चरण की दूरी तो लगी जाए, इसलिए उनके घर में हमारा जन्म। हम लोगों का सौभाग्य जी यहां पर है, एक तो कृष्ण की पदधूली, पदधूली यहां पर उद्धव भी रहते हैं, जबकि उद्धव जी आए ब्रज में गए और वहां से आए तो जब यहां आए ना तो उनकी चरण धूली यहां आई कि नहीं आई, और पानी से अपने चरण धो दिए वो धूली तो यहां की धूली में मिल गई, अब यहां से उतर के नहीं जाएगी, तो यहां पर ऐसे जगह हमने सु अपी तू अपी कीट जन्म, हमारा कीट जन्म भी हो, प्रभु मैं नहीं कहूंगा जी आप हमारा कीट जन्म मत दीजिए, किंतु वैष्णवों के घर में हो कीट।
यदि चूहा भी हूं तो कहां हूं? चूहा भी हूं तो वहीं पर। जो कुछ यदि कभी खा करके और थाला एक मिनट के लिए रह भी गया तो उसी थाले में से एक अन्न भी खा लिया, एक कुत्ता यदि चूहा भी हुआ। और इतरा इतर अवसथेषु माशनो अभूत, दूसरी जगह में जो भगवान के भक्त नहीं है ऐसे घर में ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख ब्रह्मा जैसी विभूतियां पा करके भी मैं सुखी रहना नहीं, वहां पर मेरा जन्म। यहां तक कि चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में भी जन्म ले अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा की जितनी विभूतियां हैं वो सब हमको मिल जाए तो अभी मैं वहां पर जन्म लेना। किंतु वैष्णवों के घर में कुत्ता बिल्ली यहां तक कि पतंग जो कुछ भी हो वहीं पर जन्म। किंतु एक बात है, वैष्णव घर में कीट जन्म हो ये बात तो ठीक है किंतु मच्छर मत मुझे मत बना
खटमल
या खटमल बजवा के घर में वो आपको कुछ उसको मिल जाए कपड़ा काट दिया कोई बात नहीं, किंतु ये मच्छर और वो क्या करेंगे
खटमल
वो वैष्णव को कष्ट दे इसलिए वो मत मत बना। वेद विधि अनुसारे कर्म करी ये संसार है, वेद विहित कर्मों को कर करके अनुष्ठान करके इस संसार में जीव पुनः पुनः जन्म पाता है। वेद में जो लिखा गया ये सब कर्म है, ये अकर्म है, ये कुकर्म है, इस संसार में अच्छा और बुरा जन्म मिलता है। ये हम किसी को देख करके वो ज्योतिष विद्या की जरूरत नहीं होगी, बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्र के अनुसार में निर्णय कर लेगा ये व्यक्ति पूर्व जन्म में कैसे कर्म और इस व्यक्ति का भविष्य क्या होगा वो भी इस जन्म में। इसमें कैसा होगा या कैसा था इस जन्म, अब हम लोग भी अपना विचार कर सकते हैं कि पहले कैसा और भविष्य में कैसा होगा हम लोग ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं शास्त्र के विचारों के।
जी कृष्ण जो विचार दिए सर जब मोहन सर ये तीन जन्म कब से विचार करते
हैं ये कष्ट हमने पढ़ा तो नहीं है किंतु हम लोग अपने से यदि बुद्धिमान होंगे हमने पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया और अभी हम भोग रहे हैं उसका अनुसार और अभी जो हम कर रहे हैं
आगे के लिए
वो आगे के लिए हमारा तैयार हो रहा है फसल कैसी फसल होगी ये तीन जन्म अभी से बुद्धिमान इसको ज्योतिष और ये सब देखने की कोई भी जरूरत नहीं अपने आप मालूम हो जाता है। इसी संसार में जन्म और मरण दुर्योधन ने पूर्व जन्म में कैसे कैसे कर्म किए होंगे, प्रहलाद जी ने कैसे किए होंगे और प्रहलाद जी अभी जो कर्म कर रहे हैं उनका अगला फल क्या होगा ये सब अपने आप निर्णय करके उसी के अनुसार में हम लोगों को चलना है। पूर्व कृत कर्म फले तुमार व इच्छा बले, पूर्व पूर्व जन्मों के फल से एक ये पूर्व पूर्व जन्म हमने वैसा कर्म किया और तुमार व इच्छा बले अथवा तुम्हारी इच्छा से, ये दो बात क्यों कहा बतलाओ क्यों कहा, एक बतला जो पूर्व पूर्व जन्म तत् तत् की तद कर्म के फल से या भगवान की इच्छा से ज्ञान एवात्म प्रतम विभाग, तो उसमें बताया जी अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से जो हम फल पा रहे हैं अथवा भगवान ने ही कृपा करके ये ऐसे हमको दुख दिया है। ये दो प्रकार से क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है? दो प्रकार से यहां पर भी वही कह रहे हैं, पूर्वकृत कर्म फल अथवा तुम्हार इच्छा बोले जन्म यदि लभी पुनराय। जन्म दो प्रकार से, एक भगवान की इच्छा से और एक पूर्व जन्म। तो ये दो क्यों लिखा?
भगवान की इच्छा से जो भक्त है शरणागत है, आज जो भगवान शरणागत नहीं है पूर्व कर्म फल जैसा है जन्म
दो प्रकार के। एक हुआ हम माया में वशीभूत होकर के अज्ञानता से अच्छा या बुरा जो कर्म करते हैं उसके फल के अनुसार में जन्म। और दूसरा यदि किसी व्यक्ति ने जन्म लेकर के जैसा पापी हो या अच्छा हो बुरा हो वो वैष्णव के संग में आए और आकर के वो भजन करना आरंभ कर दिया, दीक्षा इत्यादि होगी, अनुष्ठान की दीक्षा होगी।
प्रेम भक्ति दिए
तो यदि ऐसा हो गया मैं तुम्हारा हूं या वैष्णव के संग में आकर के जैसे तैसे दीक्षा लिया और भजन आरंभ कर दिया, पापी है सब कुछ नहीं और अभी तभी भी पाप कर रहा है किंतु अब भगवान का नाम लेना आरंभ किया, हरि कथा में आना आरंभ कर दिया, अब थोड़ा सा आने जाने, अब इसके ऊपर में कर्म फल के अनुसार में जन्म होगा कि नहीं? पहले बारे में तो होगा नहीं? जितना बड़ा भारी भी वो व्यक्ति हो, यहां तक कि ज्ञानी भी हो, योगी भी हो, सत्कर्मी भी हो, तो उसको कर्म फल के अनुसार में जन्म और मरण। और जिसने अत्यंत पापी भी हो करके, पापी भी था जगाई मधाई जैसा भी, और सत्कर्म नहीं करता किंतु भगवान का नाम आरंभ कर दिया और सोचा कि भगवान के नाम के द्वारा हमारा सब कल्याण हो जाएगा और हरि कथा सुनना आरंभ कर दिया और बोला जी प्रभु मैं जैसा हूं आपका ही, बस क्या होगा? अब उसको जमदा का वो दंड भोगना पड़ेगा कि नहीं?
नहीं।
अब उसको जमराज कहेंगे जे इसके पास में मत जाना, एक बार भी जिसका शीर भगवान के चरणों में निम्न हो गया दंडक प्रणाम किया खबरदार तान अनायाधम असतो अकृत विष्णु कृत्या। जिन्होंने भगवान के लिए एक बार भी प्रणाम नहीं किया, उनकी कथा नहीं सुनी हो, उन वैष्णवों की वैष्णवों का संग न किया हो, भगवान का नाम न किया हो, उनका चरणों का स्मरण न किया हो, गंगा जमुना तुलसी का आश्रय न लिया, यदि न लिया तो ऐसे असत विष्णु के प्रति न किए हुए कर्म वाले व्यक्तियों को तुम ले आ, चाहे जितने वो धार्मिक और जितने बड़े उन सबको दुष्टों को पकड़ करके ले आ। आज जिन्होंने एक बार भी इनमें से कोई भी कर दिया है जो रोक करके कह दिया मैं प्रभु तुम्हारा, एक बार उनको प्रणाम कर दिया है,
कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय।
तो इस तरह से भगवान का यदि चरणारविंदों का चिंतन किया है फिर ये संसार वाले क्या उसको दंड देंगे? जम महाराज जो सबके दंड देने वाले वही नहीं दंड दे सकते तो ये सब लोग क्या दंड? ऐसा निर्भय होकर के, निर्भय होकर के भगवान का भजन। और जिसको इन सब बातों में विश्वास नहीं वो बिला करके रोएगा, घर में रोएगी, कोई आशा नहीं, भरोसा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, मैं मर गई मर गई, मैं मर गया मर गया। तभी भगवान उसको जम महाराज के अधीन नहीं करेंगे, यदि दंड भी देना होगा तो कौन दंड देगा? इसलिए उन व्यक्तियों का जो जन्म है भगवान के अधीन है और बाकी लोगों का जम के अधीन। इसलिए पूर्व कर्म कृत फले तुम्हार बा इच्छा बले, वो तुम्हारी इच्छा से भक्तों का जन्म और मरण और दुख होता है। और कर्म फल वालों के लिए, कर्मी व्यक्तियों के लिए जन्म महाराज के विचार के अनुसार। यदि जन्म हमारा फिर हो तबे एक कथा ममो, तब एक बात हमारी सुनिए, उहे पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम क्यों कह रहा है?
पुरुषों में उत्तम,
अरे उनकी दया का संचार होने, पुरुषों में साधारण रूप में बदला लेने की भावना होती है, या जैसा करेगा वैसा ही फल, जैसे जज भी होना तो जैसा करेंगे वैसा। ये लोग अच्छे आदमी, सज्जन आदमी, दंड माफ करते, अधिक नहीं देंगे, कम नहीं देंगे। और ये आप तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो ये सब दुर्गुण राजस तामस ये आप में नहीं, आप तो है कृति, इसलिए हे पुरुषोत्तम। तो वह दास संगी जन भरे, आपके भक्त जो है उनके घर में कित जन्म यदि है तहां ते वो दयामय रही बस हे संतुष्ट, मैं संतुष्ट रहूंगा आप उन वैष्णवों के घर में जन्म लेकर। आप तो वह दास नहीं, और आपके दास नहीं है ऐसे जो संगहीन जो घर है, से गृहस्थ अर्वाचीन, वो गृहस्थ और उनका गृह अर्वाचीन, अर्वाचीन मैंने समस्त दोषों का भंडार, अर्वाचीन मैंने सब दोषों का भंडार। तार गृह चतुर्मुख स्फूति, चार ब्रह्मा जैसी विभूतियां, ब्रह्मा जी की विभूति क्या है?
चार वेदों के पालन,
ये सुंदर जगत हो जाए, जगत महत्त्व से अहंकार तीन बन गए, तीन अहंकार से क्रमशः सृष्टियां होने लगी, उसमें अशक्ति इत्यादि आने लगी, इंद्रियां सब हुई, इंद्रियां से फिर गंध शब्द स्पर्श उनको मिला करके तन्मात्रा, तन्मात्रा से फिर ये शरीर, शरीर से ये सब, ये सब विभूतियां। विभूतियां कैसी? उसने हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो उसको कैसा दे दिया? ब्रह्मांड की जितनी विभूतियां थी कभी नहीं मरेंगे, किसी के द्वारा नहीं मरेंगे, और विश्व ब्रह्मांड का ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में खेलेगा, किसी अस्त्र से नहीं मरेगा, किसी अस्त्र से नहीं मिलेगा, और 14 भुवनों का तू राजा बन जाएगा, ऐसी सब विभूतियां। कहते हैं कि ऐसी विभूति से युक्त मैं किसी जन्म में नहीं जाना चाहता जहां पर भक्तों का संग न मिले। बल्कि प्रभो आपने सुना है जो भरत जी को आपने जन्म दिया मृग के रूप, वो ऐसा ही हमको जन्म, वो भरत जी मृग होकर के अपने घर बार वालों को छोड़ करके और आश्रम में रहते, हरि कथा सुनते, गंगा का पानी पीते, और बस कान लगा करके उन्हीं का चिंतन करते। तुम्हारा कुकुर
ठाकुर, तुम्हारा कुकुर बोलिया जानो हम
प्रदीप जाने आशते नादिव्य, मैं आपका कुत्ता होकर करूंगा, और यदि कोई प्रदीप जन माने
विरोधी
पग छली ऐसा कोई व्यक्ति आया तो मैं पहले ही जाकर के हम करके उसका रास्ता रुकूंगा, आने नहीं दूंगा, गढ़ के बाहर भी रखूंगा उसको। और आप जब प्रसाद सेवन करके
तो जन प्रसाद से भी
छोड़ करके रख देंगे, वही हमारे लिए परम आदर देता है। ना चाहिए कखनो हरी कर द्वय जोड़ करी तब किन कर विनती करे तब किन कर, मैं आपका किन कर, ऐसा ही आपके चरण में प्रार्थना कर, ऐसे प्रार्थना करते हुए हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्लोक पढ़ो तो दास सुखैक संगिना भवनेष्वपि कीट जन्म में इतरावसत्थेषु माश्म भूदपि जन्म चतुर्मुखात्मना हे प्रेम प्रसाद। और ये सब भाव आए, आत्मनिवेदन कैसे करेंगे? आत्मनिवेदन करेंगे जामुनी स्तोत्र में फिर वो लेते हैं बपुरादीशु ज्योति को पीवा गुणतो असानी जथा तथा विध तदयं तव पाद पद्मयो अरहम दैव मया समर्पित बपुरादीशु ज्योति को भी बपु मने होता है शरीर अथवा योनि योनि माने 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जिसमें जीव जंतु थावरा लक्ष विंशति
जलजा
9 लक्ष 9 लाख प्रकार के जलचर हैं थावरा लक्ष विंशति 20 क्रिमयो क्रिमी है 11 लाख और दस लखानी पशव चतुर्लखानी ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं उसमें कोई भी स्त्री पुरुष अथवा स्त्री पुरुष तो हुआ कोयल कोकिली सुअर सुअरी कीड़ों में भी दो ये सब योनियां में स्त्री पुरुष हैं एक तो 84 लाख प्रकार की योनियां 84 प्रकार के योनियों में स्त्री और पुरुष मनुष्य में वर्ण उन लोगों में भी वर्ण है मछली मछली में वर्ण नहीं है कितना प्रकार का उनमें वर्ण है वर्ण माने रंग भी ले लो कोई लाल मछली कोई काली मछली कोई पीली मछली कोई सफेद कोई बैल कोई कुछ कोई कुछ नहीं तो इतना लाख प्रकार की कैसे हो जाएगा तो स्त्री या पुरुष मैं जैसा भी हूं और वर्ण आदि धर्म जत किसी भी धर्म में हूं या धर्म के बाहर भी हूं ताते पुनः देवगत भेद और उसमें भी शरीरगत भेद है सत्व रज तमो गुण सांप का कैसा गुण है सात्विक न राजसिक न तामसिक महाभोग तामसिक बाघ का क्या है गाय बैल का क्या है सात्विक और राजसी किन का है कुत्ता बाघ नहीं तो तामसिक माने अत्यंत खुखार दूसरों का प्राण लेते हैं खून चूसते हैं और सात्विक है गाय है बकरी है ऐसे सब और दोनों के बीच वाले जो हैं ये राजसिक और मनुष्य में भी ऐसे ही सात्विक राजसिक तामस भोजन में भी सात्विक राजसिक तामस आहार विहार वस्त्र पहनने में स्वभाव में भी ये गीता में
आहार शुद्ध सत्व
ये सब दिखलाया गया एक दिखलाया गया है दैव गुण न की और एक असुरी गुण दिखलाया उसमें
दो
अरे नहीं भाग अर्जुन को दिखलाया जैसे सब चीजों में शास्त्रों में भी ऐसे फलों में भी ऐसे आहार में भी है दान पुण्य में भी है सब विषय में सात्विक राजसिक और तम उनमें से भी नरह मरा कुछ हो अशेत भेद पुनः एरूप सहस्त प्रभेद जे कोनो शरीर देता कि मैं ऐसे किसी भी शरीर में रहूं हमारा कोई आपसे प्रार्थना निहोरा नहीं है कि इनमें मैं नरे जेवस्था गुण राखी ता अहंगता एवे तव पाए अब जैसा भी हो मेरी अहंगता अहंगता माने
मैं
यह आपके चरणों में मेरा रहे क्या जैसे मनुष्य हूं आपके चरणों का दास कीट पतंग हूं देवता हूं कभी आपके चरणों में हूं जहां कहीं भी रहूं बस आपके चरणों में मेरी अहंगता रहे और ममता भी आप ही के चरणों में रहे सपिलां प्राणेश्वर हे प्राणेश्वर मैंने अपना सर्वस्व अहंगता और ममता आपके चरणों में मम बोली अतः पर आपकी छू ना रही होता और आपके अतिरिक्त आपके चरणों के अतिरिक्त और मेरा कोई चीज है, अब कोई कुछ नहीं रहा, अब मेरा कोई दाय नहीं, दाय मैंने
दायित्व,
बस आपको मैंने सब कुछ हो। ऐसा हो आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। ऐसा कहना तो सहज है, भगवान के चरणों में ऐसा आत्मनिवेदन करना सहज नहीं, किंतु हो जाए, हो सकता है, जिसका हो जाता है वो अब भक्ति के दरवाजे पर हुआ है, क्योंकि आत्मनिवेदन उसमें है ना, शरणागति में, इसलिए शरणागति के लिए सरकार है। निबद्ध मुग्धांजलि रेश जाके निरंग्र दन्यो नति मुक्त कंठ दयानिधे देव भवत कटाक्षम दाक्षिण्यलेशीन सखिण्य सिंचन। कृष्ण कर्णामृत में पाठ, कृष्ण कर्णामृत किसका लिखा हुआ, इंदु मंगल जी का। ये भाव भक्ति जब रागानुगा भाव भक्ति होगी तब इसमें आएगा, इसलिए मधुरे न समाप्त, ये तृतीय जाम समाप्त करेंगे ना, अब मधुर से कर रहे हैं। पहले लिया जाम ना आचार्य का वैधी भक्ति का, और फिर तब लिए रागानुगा का, इनका बिंदु मंगल जी का। निबद्ध मुग्धांजलि रेश है ये बजा, हाथ में ऐसे ही कर करके सिर के ऊपर, हे प्रभु मैं उसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु निरंग्र दैन्य, दैन्य कैसा, निरंग्र निष्कपट, निष्कपट दैन्य किसको कहते हैं, किसी वस्तु के लिए दीनता पूर्वक कोई चीज मांगते हैं तो वो दैन्य कपटता है, और भगवान के लिए ही केवल उनके शरणागति होने के लिए, उनकी भक्ति के लिए जब मांगते हैं तो वो निरंग्र दैन्य, निरंग्र दैन्य। उन्नति मुक्त कंठम, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आपको निष्कपट रूप में हृदय की भावना को आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि एक दुष्ट जन, मैं दुष्ट व्यक्ति हूं, मैं समझ रहा हूं तुम्हें, और निष्कपट करते तब उसको पुकारना होगा, केवल ऐसे जोर से चिल्लाने से वो नहीं होगा, पुकारने का ही तात्पर्य, रो रहे हैं जोर से, और उस समय में रोने का स्वर जो है वो साफ नहीं निकलेगा, तो इसको कहेंगे पुकार, आने तो हो जाएगा पुकारना, पुकारने और पुकारने में अंतर है, तो पुकार पुकार कौन है, देवदयम दाक्षिण्य प्रकाश यतम, हे प्रभु हमारे प्रति आप दाक्षिण्य प्रकाश करें, दाक्षिण्य माने ऐसे हाथ कर दीजिए अब मेरा भार तुम अभय, ऐसा आप प्रार्थना मैं करता हूं, कृपा दृष्टि एक बार करो हो सिंचन, एक बार अपनी कृपा रूपी वृष्टि से, दृष्टि से वृष्टि और उससे सिंचन करें, तबे ए जनेर प्राण हो वे रक्त, तभी हमारा प्राण रक्षित होगा अन्यथा, ऐसे कहते हुए हरे कृष्ण 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 भगवान क्रमशः मधुर शास्त्रिक हरि कीर्तन हरि नाम कीर्तन करेंगे, कैसे, मई प्रसादम मधुरई कटाक्ष वंशी निनादानुचर विधे त्वयि प्रसन्ने कि महापरैर्न, त्वयि प्रसन्ने कि महापरैर्न। मंगल जी खूब रो रो करके, बिल मंगल जी रो रो करके कार मई प्रसाद मधुरई कटाक्ष, ओ प्रभु मधुर कटाक्ष के साथ में बंसी निनाद के द्वारा, बंसी निनाद कैसे, मधुर कटाक्ष, और उस कटाक्ष के द्वारा हमें बुला रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अमा के प्रसाद करी तो पदल, आप अपने चरणों में हमें ग्रहण करें, मैंने बुला करके, कौन बुला रहा है, कृष्ण बुला रहा है, तब ये और हम जा रहे हैं वो ये, और कृष्ण ही बुला रहे हैं, कैसे, ऐसे जाने से कभी हो सकता कि हम न जाएं। और यदि कृष्ण बंसी ध्वनि और अपना मुखार बिंद उसमें भी अपने कटाक्ष से कृपा कटाक्ष को से यदि हमको बुलाए ना, और यदि बुला करके अपने सेवा में नियुक्त कर दे, बस ये है मधुर भाव। प्रसन्न है ले तुम्हें अन्न प्रसन्नता, यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई प्रसन्न हो और न हो मुझे उसकी आवश्यकता। यदि आप प्रसन्न हैं और जगत अप्रसन्न है तो वो क्या कर लेगा, और आप यदि प्रसन्न नहीं है जगत ही प्रसन्न रह करके हमारा क्या करेगा। इसलिए दूसरों की प्रसन्नता की और प्रसन्नता का भय मुझे नहीं, बस आप प्रसन्न हो। यदि भगवान का कोई भजन करता है ना, कोई भी भगवान का प्रसन्न भजन करता है, भगवान प्रसन्न हो, और भगवान का भजन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे ऐसा कहीं है, कहीं भी नहीं। वो तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं बहाना कर रहा हूं, कुछ ही बहाने तुमको लेना है। और कोई व्यक्ति यदि भगवान का भजन कर रहा है और विश्व या उसके सभी लोग उस पर नाराज हैं तो उसका क्या होगा, बिगड़ेगा कुछ कि नहीं। वक्त कहता है तुम प्रसन्न रहो और कोई भी बात, भगवान प्रसन्न रहे और भगवान नाम के द्वारा हरि कथा श्रवण के द्वारा ये प्रसन्न है, उनकी आराधना से प्रसन्न जरूर प्रसन्न हो, और भगवान देख रहे हैं ये हमारा, तब फिर कोई प्रसन्न होगा ठीक है। और हिरण्यकश्यपु जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसका विरोध यदि किया, प्रहलाद महाराज जी ने भी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको क्यों मारते हो, क्यों गाली देते हो, मैंने क्या तो आपका बुरा किया, कहा कभी कुछ नहीं, कभी कोई कुछ बात नहीं, चुपचाप, क्योंकि भगवान प्रसन्न है मैं जानता हूं। तो ये क्या कर, मर भी जाऊंगा तो क्या कर रहे हैं, ये शरीर पुनः का, किंतु और यदि उनकी वो भी रहेगी इच्छा तो वो नहीं कर सकते। एक आदमी ग्रास लेने भोजन करने जा रहा और ग्रास उठाया, कॉल उठाया, यहां तक ले गया, कोई जरूर है जो मुख में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, कोई ठीक है वहां से भी नहीं पहुंचेगा। उसी समय बंदर, आजकल बंदर कोई सुनते हैं कि कहीं से कुछ, यहां का बंदर अभाव हो गया था तो म्यूनिसिपैलिटी ने बंदर मंगा लिए, बंदर खूब आ गए हैं, खूब बंदर आया और लेकर के साथ साथ रोटी करें, तवा से ही रोटी उठा लेकर के चला, कोई ठीक नहीं, ये कॉल ग्रास जाएगा। इसलिए यदि आप प्रसन्न हैं, प्रसन्न है ये तुम्हें अन्न प्रसन्नता प्रयोजन की बात बोले, मेरे लिए क्या प्रयोजन है जो कोई प्रसन्न, बस भगवान प्रसन्न हो। किंतु हम कहेंगे जैसे भाई पहले सब ये सब घर का काम कर करके तो भगवान का भजन कर, किंतु घर का ये सब बिगाड़ करके भजन करना ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। अब घर का कौन काम ठीक है कौन बेठीक है ये कौन विचार करेगा, ये व्यास जी विचार करेंगे न सुखदेव गोस्वामी नारद, न हिरण्यकश्यपु विचार करेगा, दुर्योधन कौन विचार करेगा, ये सब देखना है कैसे घर बनता है कैसे घर बिगड़ता है, ये विचार किसके ऊपर, ये सब विचार। एक मोर कथा तो प्रसन्नता बिना अन्य प्रसाद की कार्यमार बोलो कहीं हुआ बात, मैं अबाध होकर बिना बाधा का मैं ये बोलता हूं निष्कपट होकर के कारण, आप यदि प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न, आप नहीं प्रसन्न हैं तो कोई प्रसन्न होकर के ही क्या, हिरण्यकश्यपु हमारे ऊपर में खूब प्रसन्न हो जाए क्या कर लेगा, हमारा धन धन और ये सब चीज दे देगा, किंतु जब भगवान आएंगे नृसिंह देव ना तो फिर उसी का ही कुछ ठीक नहीं, तो हमारा हमारी क्या रक्षा करेगा। और भगवान यदि प्रसन्न है ने? तो सब सभासद लोग एक तरफ में कर्ण और दुशासन दुर्योधन सब एक साथ और अकेली द्रौपदी, वो भी कोई चेष्टा नहीं, वो भी यदि वो कम बलवान थी यदि उसे में झपट पड़ती तो फिर क्या होता फिर निकल जाता उन लोगों का, वो कम नहीं थी और उसी समय में भीम अर्जुन सब खड़े हो जाते, युद्ध लग जाता, किंतु निश्चेष्ट है। अच्छा देखो तो प्रभु क्या करते, देखो जैसे सब पाप हो गया। इसलिए भक्त लोग निर्भय होकर के भगवान का भजन करें, कभी भी डर की कोई चिंता नहीं। अरे मरेंगे तो मरेंगे माने क्या, ये सही छोड़ करके कहीं फिर जन्म नहीं, फिर वहां से भजन करेंगे, वो भी चला जाएगा, फिर तीसरे से करेंगे। अरे यहां से करेंगे नहीं, यहां से कोई खदर देगा मथुरा से, मैं बंगाल चला जाऊं, वहां से खदर देंगे गुजरात चला जाऊं, वहां से कहीं चले जाए तो और चले जाएंगे। वैसे ही इस जन्म से इसको काट दिया तो फिर कहीं दूसरी जगह जन्म हो गया, फिर तीसरी जगह जन्म हो जाएगा। डरने निर्भय होकर के भगवान का, प्रहलाद महाराज को ऐसी निर्भीकता एक शरणागति, एक साधारण शरणागति भजने रवि शरणागति भाव अभी तृतीय ज्ञान और कोई दिखे जब जाब तक अभी साधारण एक उपनिष्ठा सह खरीले कीर्तन, ऐसे निष्ठा के साथ, निष्ठा माने निष्ठा निश्चय एकदम बुद्धि स्थिर करके, इसका नाम है निष्ठा, उसमें अवस्थित होकर के, अब अपचिदत होकर के, निर्भीक होकर के, अचंचल बुद्धि होकर के, भगवान रक्षक हैं, पालक हैं भगवान का, तब कोई शोक मोह भयापहा शोक मोह सब कुछ, ऐसा निर्भीक नहीं होने से बिलबिला रहे हैं, भगवान का नाम है जप रहे हैं बिलबिला, अरे किस लिए बिलबिला, अरे कल ना तो परसों तो मरना है ठीक, अरे वृंदावन में हजारों आदमी, हजारों लड़कियां स्त्रियां भजन नहीं कर रही, नाम करने से कौन रोक देगा, जहां रहेंगे वहीं पर भजन कर, पेड़ के नीचे भजन हम भी करेंगे, भीख मांग करके करेंगे, जैसे तैसे करेंगे। कस्मा भजंती कवयो धन दुर्मतांग व्यक्तियों का, किस लिए हम ऐसा करेंगे, उनके बात के अनुसार हम भजन करेंगे, प्राण जाए बल भजन न जाए, प्राण भले ही चला जाए भजन हमारा नहीं जाएगा, ऐसा निष्ठा करके भगवान का भजन। एक उपनिष्ठा सह करिले कीर्तन अचिरे हईबे रुचि पालित, तब इसके बाद में रुचि हो जाएगी, ऐसे भजन करो तो देखो तो क्यों नहीं रुचि होती है। पूर्वान्न काले लीला ए रूप है, नमाशय काले चिंता करो महाशय, हे महाशय आपको रुचि अब उत्पन्न होने जा रही है, इसलिए हे महाशयों अब पूर्व काल पूर्वान्न काल में जो लीला होती है उसके साथ ही इसको मिलाओ हरिनाम। ये तो हुआ निष्कपट होकर के, शरणागत होकर के, बुद्धि को स्थिर करके ना, और जब ये ऐसा होने लगे तो उसमें कुछ नमाश नाम रूपी रस उसमें लगा, और वो तृतीय प्रहर की लीला प्रातः काल हो गया है। श्रीमती राधिका जी को बुलाया गया है कुंदलता के द्वारा नंद भवन यशोदा जी के, आकर के उन्होंने बड़ी सुंदर से रसोई बनाई, सब सखियां मिलकर के रसोई बनाई, जो श्रीमती जी कृष्ण के विरह में जाड़े के दिनों में भी सीट बर्फ उनके सामने आकर के पिघल रहा है, गर्म हो जाता है, कमल के फूल बहुत ठंडे होते हैं वो सूख जाते हैं, और वही राधिका जी 1000 चूल्हे जला दिए गए और उसके बीच में खड़े होकर के कलछी चला रही हैं, रसोई बना रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, और उनको क्या हो रहा है,
आनंद हो रहा है,
आनंद हो रहा है, उनको तनिक भी ताप नहीं लगता, और वहां पर ऐसे ही ताप लग रहा है। अब वो रसोई बन गई, पूर्वांग में धेनु मित्र विपिनम अनुषितम गोष्ठ लोकानुजातम कृष्णम राधा तिलोडम तदवश्य कृते सातत कुंड तीरम राधा अंचालोक्य राधांचलो आलोक्य कृष्णम कृत गृहम गृह गमनात् आज्ञा अर्चनाय दिष्टा कृष्ण प्रवृत्ति प्रहित निज सखी वर्तमनेत्रं स्मरण। ये रूप गोस्वामी जी का ये तृतीय श्लोक, इसमें ये पूर्वान्न लीला का वर्णन है। रूप गोस्वामी आठ लीलाओं के लिए, आठ प्रकरण के लिए आठ, और एक श्लोक है सबका मिला, बस उनका यही है, नौ श्लोक बनाया, एक श्लोक में सब आठ आठ हो ज्ञान, और एक एक श्लोक एक एक ज्ञान के लिए। इसके बाद में जी गोस्वामी ने भावनामृत
चक्रवर्ती ठाकुर
जी गोस्वामी ने
कृष्ण भावनामृत,
और इसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने
कृष्ण भावनाम
कृष्ण भावन, और कभी कर्णपुर ने एक ग्रंथ किया अष्टकालीन लीला। ये सबको मिला करके वैष्णव लोग उस पद्धति से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीला वही सबसे अधिक प्रसिद्ध, और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कृष्ण भावना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के करीब करीब अधिकांश माने सभी ग्रंथ ही राधानुगर, सभी ग्रंथ तो बतला रहे पूर्वान्न में, पूर्वान्न माने अन्य माने दोपहर के पहले कृष्ण भोजन कर लिया, तो जसमत वो है ना हजा भगवत गौर, कृष्ण ने भोजन किया, राधा जी के तरफ में आंखों से देख करके कोने से राधिकार हेरी नयन हेर कोने, नयन के कोने से देख रहे हैं और लड्डू खा रहे हैं, और मधुमंगल लड्डू खाता हुआ ये कांख बजा रहा है ऐसे ऐसे भक्त लोग सब लोग एक साथ में बैठ गए, कभी कभी दिन में नहीं रात में, रात में सब लोग बैठते हैं तो उसमें उपनंद नंद सुनंद अभिनंद
नंद
और गुरु जी भी उनके उनको बुला लेते हैं, हागरी को संदिग्ध ऋषि को और सबको बुला लेते, और सब बच्चों को बुला लेती हैं जसोदा में, और सारी सारी लाइन लाइन करके अलग अलग पंक्तिबद्ध होकर के। उस समय नंद बाबा अपने दाहिने इस पर जंघे पर बलदेव जी को, और बाएं तरफ में पहले हाथ से उठा करके बलदेव जी को खिलाते हैं, फिर कृष्ण को खिलाते हैं, दोनों का पेट जब भर जाता है थोड़ा थोड़ा तब फिर उसी में से अपने, और उस समय में तरह तरह की लीलाएं होती हैं खाने के समय, बहुत तरह की। उस समय इसको माने प्रसाद पाने का ये विलास है, कभी कभी राधिका जी उनको जसोदा जी ने आदेश दिया, अरे उस लड़की को भेज देना राधा जी को, राधा जी को ने ऐसे ही कर दिया, लड़की छौड़ी को या लाली को भेज दो, लाली पूरी पका रही, अरे थोड़ा सा पूरी लेकर के आ जाओ बेटी, बार बार करने से रोहिणी ने कहा कि अरे मैं व्यस्त हूं थोड़ा सा जल्दी से मांग रहे हैं जल्दी दे, वहां पर गई और जहां सामने गई बस हाथ से सब कुछ गिर गया, बस फक करके लाली चली गई। इस तरह से विशेष करके मधुमंगल और कृष्ण इत्यादि जसोदा मैया लाती हैं, और ये कहता है ये पेटू रोगी आदमी इसको कुछ खा नहीं सकता, अरे मैं खूब खाने वाला मुझे दीजिए, उनको वो लेता है, और इधर में जसोदा जी जब लाने जाती हैं तो लेकर के सब लोगों में डाल देता है, मैंने खा लिया अब ले आओ। इस तरह से बड़े आनंद के साथ में लोग खाते हैं, खाने के बाद में आचमन किया बलदेवस्व ने बलदेव प्रभु के साथ, और पास ही में उनका विश्राम करने का कक्ष है उसमें जाकर के सखाओं के साथ में जाकर के थोड़ा सा विश्राम नहीं उस समय में विश्राम का एक घर है जो रसोई घर और कृष्ण के घर के बीच में वहां पर थोड़ा सा विश्राम किया और उसी समय में वो
क्या
जाम्बूल रसाल आमे तांबूल मसाला वो तांबूल और मसाला लाते सब सखाओं को बात करके विधिवत कृष्ण सुन और उसी समय में जोशोदार आज्ञा पे ध्वनिष्ठानी श्री कृष्ण प्रसाद
राधा
वो राधिका जी को बुलाती हैं जसोदा जी अब तुम भी बेटी खा लो लाली देखो वो हमारा पुत्र है उसे कम तुम हमारी नहीं लड़की है तुम भी खा लो अरे वो तो हमारे सामने खिलाया मैंने उसे खिलाया परोस करके बेटी तुम करो तुम बैठ जाओ हम खिला दें बस उसको गोदी में लेकर के खिलाने की चेष्टा करती और लज्जा के मारे में खाती जब नहीं खाती तो यदि खा लेती तो गड़बड़ हो जाती नहीं खाए कुछ कारण है अब वो जितना जो कुछ था जो बनाया गया था राधा जी ने और सखियों ने रोहिणी मैया ने जो कुछ बनाया था वो रखा है वो रख करके और धनिष्ठा के द्वारा भेज रही हैं वहीं पर अभी वहीं पर हैं रात वाला भेजें और यहां वाला भी अभी वहीं पर है अभी वो बैठ उनको बैठा दिया धनिष्ठा ने बड़ी चातुरी से कृष्ण का अवशिष्ट था उसमें लिया और उसमें मिला दिया ये किसी को मालूम नहीं था और उसी को लेकर के राधा जी के पास में गई सब सहेलियों को साथ में लेकर के वहां से बेटी मैं अभी यहां पर दूसरे काम में लग रही हूं तुम लोग खा लो और ये सब लोग मिल करके सबको दिया और बड़े मजाक हंसी के साथ में उन्होंने लेने के बाद में कृष्ण साथ में मिलन भी हुआ इसके बाद में कृष्ण अपने सखाओं के साथ में धेनु मित्र बृंदई बृंदन यानी बृंदई सह धेनु सह धेनु और मित्रों के साथ में विपिनम अनुषितम वन में जाना आरंभ किया वन के लिए जाता है किंतु गोष्ठा गोष्ठ लोकान यातम गोष्ठ जो के जो लोग थे जसोदा मैया नंद बाबा उपानंद और जो ब्राह्मणिया थी और सब लोग थे सखा लोग हैं सखियां हैं सब लोग उनके पीछे पीछे जसोदा मैया बार बार जाती हैं कृष्ण को आलिंगन करती हैं रोती हैं और फिर कृष्ण शपथ देते हैं फिर लौट आती हैं फिर गैया की भांति बछड़े के पास में फिर पहुंच जाती है बहुत कहने पर शपथ देने मैया आप मत जाए बहुत दूर हम लोग गोष्ठ में आ गए मैया खड़ी हो जाती है अब बाबा जो है ना अब चलने लगे अब तक चल रहे थे गौ रूप में अब प्रधान रूप में और बेटे को लेकर के आलिंगन करते हैं आंख से आंसू आता है सबको आदेश देते हैं इसको अधिक दूर मत ले जाना पासी से इसको लौटा दे फिर बाबा को पाकर के आगे चलते फिर बाबा पहुंच जाते उनको भी शपथ दिया वो भी अब खड़े हो गए अब गांव वाले चलने लगे स्त्रियां चलने लगी उनको भी ऐसे रोका और इसके बाद में सखा आगे थोड़ा सा चले गए बलदेव प्रभु जी आगे चले गए अब गोपियां रह गई अब उनको वंशीकरण निपतित खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम ब्रजराज सूनु जस्या कथाक्ष सर्गात मुश्चितस्य संग्राधिका परचरामि कदा वहां पर कृष्ण की वंशी हाथों से गिर जाती मुकुट गिर जाता है कपड़े पीतांबर गिर जाते और यदि उन्होंने कटाक्ष भर करके उनके तरफ में देखा तो कृष्ण भी छलमल होकर के गिरते इतने मदमल का था उनको पकड़ करके अरे जरा पोष में आओ देखो कौन है साथ में नंद बाबा देख बस फिर अपने को संभाल ऐसे करते करते कृष्णम राधा लोलम बनने जा रहे हैं किस लिए? धेनु साचारो संगे कृष्ण बन जाय रंगे गोष्ठ जान जनु व्रत हरि राधा संग लोभ पुना राधा कुंद तट बना जय धेनु संगे परिहरि कृष्ण राई गीत पाइया राधा नी जगृह जाइया जटिनाय नय सुजाक्षणे गुप्त कृष्ण पथ लखी कतखने आई से सखी व्याकुली राधा स्मरि मने। इस प्रकार से भजन करेगी। इधर तो कृष्ण को विदा कर दिया। जब तक धूली उड़ती रही, जब तक गायें चली गईं, गायें ओझल हो गईं, कृष्ण सब लोग ओझल हो गए, धूली उड़ती रही, तब तक वहीं पर सब खड़ी रही। नंद बाबा यशोदा अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के उच्च स्थान पर चले गए और वहीं से उनको देख रहे। कृष्ण भी अंतिम उन लोगों को विदाई देकर के चले और बार बार पुनः पुनः गायों को संभालने के लिए पीछे आते हैं और इनके तरफ मुंह मुंह करके देखते हैं। अंत में संकेत से बतलाया, हम लोग कुसुम सरोवर में मिलेंगे अथवा शुद्ध कुंड में मिलेंगे, राधा कुंड में मिलेंगे। कृष्ण रेंगी तो पैया, अब राधा कुंड तट राधा अंग लोग है पुनः राधा कुंड तटे पर राधा के संग के लिए वो राधा कुंड में उपस्थित होते हैं। जय धेनु संगी परिहरि, धेनु और संगियों को सखाओं को छोड़ करके मैं भी आ रहा हूं और उनको मोहित कर दिया। वो सोच रहे हैं कि कृष्ण अभी यहीं पर हैं, जरा क्लांत हो गए होंगे, बस हम लोग का आदेश है जरा गौओं को देखो, इतने में कृष्ण चले जाते हैं संगों में छल करके उनको चले जाते हैं। और इधर में कृष्ण की इंगित पा करके राधा निज गृह गई, वहां से घर गई जावट में और जटिला से सूर्य अर्चन के लिए सूर्य पूजा के लिए आदेश लेकर गुप्त कृष्ण पथ देखी लखी। गुप्त रूप में वहां पर पहुंच गई कुसुम सरोवर, वहां पर उनके लिए रास्ता देख रहे हैं, फिर उनको छल बल करके उनको विपक्ष को उनको चंद्रावली प्रवृत्ति को और फिर कृष्ण को राधा कुंड से सूर्य कुंड में ले गए। कतक हमें आई से सखी व्याकुलित राधा स्मरण, वहां पर तुल्य पूजा करने के लिए सूर्य की पूजा करने के लिए उपस्थित हूं और ये सूर्य पूजा के ब्राह्मण छात्र बन करके हाथ में लठिया बगल में पोथी और ज्योतिषी बन करके वहां पर पूजा करने के लिए उपस्थित हो गए। इन सब लीलाओं का स्मरण कोई साधक करे यदि ऐसा हो, और नहीं तो पहले वाला भी कर। ऐसे करते 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 कुछ दिनों में क्रिकेट करने
पंचा
रुचि से भजन करना ही मध्यान्ह आ गया, सूर्य आ गए एकदम ऊपर, अर्थात अब भजन होने का, भजन राज्य का हुआ। अब जिसको रुचि नहीं हुई अभी गड़बड़ी, कहने से आरती में आता है, कहने से कोई सेवा करता है, कहने से अर्चन करता है, कहने से हरिनाम करता है, कहने से अन्न भी करता है, कहने से कितना हरिनाम किया देखो, अरे नहीं हो तो आठ बार तो करो, तो आरती नहीं जाता तो फिर क्या हो?
इसलिए रुचि आएगी तो आप छूटेगा, रुचि होगी इसलिए ये मत खाना। उसके संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षा एक एक श्लोक पहले वाले में केतु दर्पण मार जन्म दिया, दूसरा में दिया नाम नाम काय, तीसरे में दिया बिना दपि सुहेश करो रपि सहिष्णु, ये निष्ठा होने पर ऐसा होगा थोड़ा थोड़ा। और चौथा आया न धनम न जन्म न सुंदरिन वार कविता जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवता भक्त रहे वही न धनम, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, ये भीतर से हो, जब नाम में रुचि आएगी तब वो सब धन की प्रिया संपूर्ण रूप से चली जाए। धन माने बहुत प्रकार के धन, इस संसार में धन कहा जाने वाला जो कुछ भी है, अब किसी भी धन में तनिक भी लालसा नहीं रह जाए। यहां तक कोई धन भी देगा तो मुझे इसकी क्या जरूरत। एक समय कोई ऋषि वो वन में आराधना करते थे, तो कोई जनक जी के वंश के कोई निमी वंश में कोई राजा था, तो उनको बड़ा भी मान था, ये हमारे ऋषि हमारे पुरखों की वनों में पुरखों के वनों में और निकट में हमारे वो ऋषि रहते हैं और सब उनके दर्शनों के लिए जाया करते हैं, किंतु श्रद्धा होने पर भी वो जाते जा नहीं पाते, राजकाज में सब समय व्यस्त रहते थे। कुछ दिनों के बाद उनकी इच्छा में ये जाएं, उनका मंत्री भी बड़ा श्रद्धालु था, वो भी उनके साथ में कहा चलिए दर्शन करने के लिए चला गया। तो वो घर से बहुत स्वर्ण और सब चीजें काफी धन रथ पर रख कर और चले। जब उनके आश्रम में गए तो उनके चरणों में सब निवेदन कर, सब कुछ निवेदन कर, धन रत्न और जो कुछ निवेदन करके प्रणाम करके अंदर आ रहा।
धन लेकर तुम आश्रम में गए,
उनको रख करके प्रणाम करके बैठे, आप किस लिए यहां पर पधारे, अरे आपके दर्शनों के लिए आया ही, बहुत दिनों से लालसा की नहीं आ सका था, किस लिए तो ये सब चीजें किस लिए ले आएंगे, धन और जो चीजें स्वर्ण हीरे जवाहरात ये सब किस लिए, इसलिए ले आए कि आज आपसे दीक्षा लूंगा तो ये सब चीजें आपके चरणों में सब निभाऊंगा, इसलिए आज मुझे दीक्षा दे दी। मैंने कहा अभी जाइए 25 वर्ष के बाद में आए, तो उनको बड़ा क्रोध हुआ, हमारा हमको ये जानते नहीं होंगे शायद ये समय यहां करा जाता। उन्होंने कहा आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं नेमी महाराज के वंश में मैं महाराजा इस समय। उन्होंने कहा जैसे मैं ये जानता पहले से ही जानता था कि आप, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा, तो कुछ और उल्टी सीधी बातें कहने जा रहे थे। मंत्री ने समझाया आपके लिए ये शोभा नहीं थी, ये आपके कल्याण के लिए कह, इसलिए कुछ भी तर्क वितर्क ना करके इनके बात को मान लीजिए, और मान करके क्यों नहीं आपको दीक्षा आज दिया इस पर विचार करेंगे जाकर के घर पर, और तब फिर आप
जब जब करें 25 वर्ष के बाद में फिर आए, उस समय 25 वर्ष का काल कोई अधिक काल नहीं होता, क्योंकि आयु बहुत लंबी होती थी ना, हजारों हजारों वर्ष की आयु होती थी, इसलिए 25 वर्ष का काल कोई 25 वर्ष के लिए फिर हाथ जोड़ करके चले गए। अब वो रोज ही सोचते हैं कि मैं इतना धनी, इतना प्रभावी, इतना बली, सब प्रकार से योग्य, हमको उन्होंने क्यों लौटा दिया, दीक्षा क्यों नहीं दी। लोग बहुत से आजकल तो कलिकाल में दीक्षा देने के लिए गुरु लोग लालायित रहते हैं, जब किसी को दीक्षा रास्ते चलते हैं बुला करके दीक्षा देते हैं, अपना वो भेजते हैं, दलाल भेजते हैं, आजकल दलाल बल्कि प्रॉक्सी करते हैं और प्रतिनिधि होकर के चारों तरफ में दीक्षा इत्यादि देते हैं, रीति इत्यादि। तो हमको क्यों लौटा दिया, हमारे अंदर में क्या कमी है, सोचने लगे जैसे शायद यही कमी है कि हमारे अंदर में दंभ है, अभिमान है, मैं राजा हूं और सब दुर्गुण है, इसलिए हमको लौट। ये करते करते 25 वर्ष में कभी ना कभी ये चिंता करते और उसके लिए अनुतप्त होते, सचमुच में हमारे अंदर में ये दुर्गुण। 25 वर्ष जब हो गया तो उनके मंत्री ने एक उनसे कहा, जैसे आज 25वां वर्ष पूरा होने को है, अब आप चल सकते हैं और दीक्षा ले सकते, अब आप शुद्ध हो गए। बड़ी उत्कंठा से उस दिन आज वो सब कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा फल और वो लकड़ी होती है ना
हवन के लिए,
हवन के लिए वो सिर पर वो गठरी अपने आप रख कर, और रथ में नहीं गए, रथ में भी जाकर के उनके आश्रम के बहुत दूर ही उसको त्याग कर दिया, राज वेश भी त्याग कर दिया, साधारण वेश में वहां पर पहुंचे और जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा ये तुम कौन हो, अब तो मैं वही हूं जो 25 वर्ष के बाद आपने बुलाया। तो उसके चेहरे की तरफ मैं देखा और बोले ठीक, आज मैं तुम्हें दीक्षा, तुम्हारा वो नशा उतर गया और धन के बदले किसी को भी खरीद सकते हो, ये भी तुम्हारे अंदर में अभिमान था और धन को ही तुमने सर्वोपरि उस समय मान रखा और तुम्हारे को राजा जैसी है कड़ी थी, मैं राजा हूं, तो ये सब अभिमान का नशा भी उतर गया है, अब तुमको ये कह करके और उनको दीक्षा दी और वो अत्यंत होकर के रोने लग गए, अत्यंत दीनहीन बन गए। तो ऐसे ही न धनम, धन होने से भगवत की भक्ति में बाधा होती, श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, नित्यार्थ देन वित्ते दुर्लभे न आत्म मृत्यु न गृहापत्य
पशु भी चले।
कहते हैं ये जो धन है ये कैसा धन है, नित्यार्थी, आर्थी को देने वाला, आर्थी माने दुख, ये धन रहने से जरूर आर्थी दुख देता। एक पिता है बहुत सज्जन आदमी है, अपनी सज्जनताई से अपने कर्मठता से और उन्होंने कुछ धन इकट्ठा, अब उनके चार लड़के हैं, चार लड़के भी साधारण नहीं, बड़े धुरंधर, अब उस धन पर उनकी दृष्टि पड़ने पर पिताजी को भी कष्ट दे करके ये हमको दे दो हमको दे दो हमको दे दो और लड़ाई करते रहेंगे उनकी शांति को उस रुपये के लिए, यहां तक कि उनको मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। तनाव धनम और कहते हैं नित्यार्थी देना वित्ते न दुर्लभे न आत्ममृत्यु न, वो धन रहेगा तो क्या करेगा, आत्मा को भी मार डालेगा, आत्मा को मारना माने क्या, भगवत भजन से रहित कर देगा, दुर्लभे न आत्ममृत्यु न, और गृह उस रूपे से जो संग्रही जो धन जन पुत्र बगीचे पशु आप तो माने कुटुंबी, ये कुटुंबी कैसे होते हैं, पैसे से ही होते हैं। पैसे से लड़के की शादी थी, उससे बहू आई, उनसे संबंध हुआ और दूसरे पैसा है ना, तो बुआ आदि के लड़के इत्यादि जितने आसपास के कुटुंब और ये है ना सब आदर करेंगे और सब आने लगे, और जहां धन नहीं रहेगा तो कोई कुटुंब भी नहीं रहेगा। इसलिए आत्ममृत्यु ना, वो आत्मृत्यु स्वरूप है, और जब उसी से नहीं कुछ हुआ तो उससे जो संग्रहित जो चीजें हैं उनसे कैसे सुख हो सकता है, इसलिए न जन्म, न जन्म जन्म भी मुझको नहीं चाहिए। न सुंदरी कविता, यहां पर सुंदरी को अलग करो तो सुंदरी माने भाग्य, और दोनों को एक कर दो तो सुंदरी कविता माने अलंकार युक्त साहित्य और विद्या, विद्यारूपी सुंदरी। हे जगदीश, मैं इन सबको कुछ को भी नहीं चाहता। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, हे ईश्वर जन्म जन्म में आपके चरणों में मेरी कह चुकी भक्ति हो। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सोच विचार करके जब तक यह भाव रहेगा इनमें से किसी चीज की लालसा होगी भगवत भजन ठीक। इसलिए निष्किंचन होकर के, पहले जैसे राजा आया था वो भाव दूर करके, निष्किंचन होकर के जब आएगा तब इसका। इसलिए कहते हैं गृह द्रव्य शिष्य पशु धन आदि, ये और जरा व्याख्या करें क्योंकि अनुभव युक्त है ना। भक्ति विनोद ठाकुर गृह द्रव्य, गृह के जो द्रव्य हैं, शिष्य शिष्य को भी ले लिया, शिष्य शिष्या तब उसके अंदर में, वो भी पुत्र से अधिक प्यारा होता है और प्यारी होती है शिष्य भी। पशु, पशु माने गाय बैल, आजकल कुत्ते अधिक प्यारे हो रहे हैं पशु। धन आदि धन, ये सब धन है प्रारंभ से लेकर, स्त्री पुत्र दास दासी कुटुंबादि जन, स्त्री पुत्र दास दासी ये सब जन, ये जन का कार्य, न धनम न जन। और सुंदरी कविता काव्य अलंकार आदि सुंदरी कविता, बड़े सभा में चले जाइए और काव्य अलंकार से साहित्य की झड़ी कर दीजिए, सब लोग देख करके आवाज हो जाए, सब अद्भुत। पार्थिव विषय मध्य ये सब वार्ता, ये सब पार्थिव विषय, पार्थ माने जड़ विषय है, ये सब वार्ता, वार्ता माने भगवत भक्ति के अतिरिक्त जितने भी वार्ताएं हैं या इनकी वार्ता, ये जो कान धन जन पुत्र परिवार ये सब कितने इनकी वार्ता, इनकी बात है।
शिष्य के धनर मध्य बोले पुत्र के जनर मध्य करना, शिष्य को बोलें धन और पुत्र को बोलें जन,
किस भाव से कहा है वो, उसको उसमें भी ले लो इसमें भी ले लो, कोई हर इसमें कोई आज यदि उसमें उसमें रहेगा तभी कोई हर, उसको भी छोड़ो इसको भी छोड़ो, कहीं से छोड़ना है। यही सब पाई बार आशा नहीं करते, इसके लिए आशा नहीं करते, भगवान से कहते हैं हमको इसकी जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्ति दे मो कृष्ण कृपा कर, कृष्ण जी आप मुझे अपने चरणों में अहित की भक्ति प्रदान करें, प्रेम स्वभाव जहां प्रेम संबंध से ही माने कृष्ण मोर नहीं भक्ति का। चैतन्य चैतामृत कार कह रहे हैं कौन, कृष्णदास कविराजे, ऊपर की तीन लाइन जो है वो कहे चैतन्य महाप्रभु जी, और ये चौथी लाइन कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। लोग प्रश्न करेंगे ये वो तो स्वयं भगवान थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो तो घर बार छोड़ दिए थे, नहीं छोड़ा स्त्री पुत्र माता वृद्ध माता पिता सब कुछ छोड़ करके किंचन होकर के चले गए थे महाप्रभु, तो महाप्रभु जी एक अंपर, तो इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें एक लगा गए। महाप्रभु जी इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम का जहां संबंध और प्रेम हृदय में आ जाता है तब वो मानता है कि कृष्ण में मेरी भक्ति नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी से श्लोक को कह रहे हैं। उनको कोई चीज की जरूरत नहीं, वो सबको पार कर गए, वो स्वयं भगवान है, तो अभी वो कह रहे हैं क्यों कि जहां पर प्रेम उदित हो जाएगा वहां पर अपने को दीनहीन कोई गुणों से हमारा संबंध नहीं है ऐसा मानने लगे। हम लोगों की अवस्था में या हम लोगों से और जो नीचे वाले हैं वो थोड़ा सा नाम करेंगे कि नहीं करेंगे, किंतु तो कोई कह देगा नहीं जानते हो जो मैं भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, साधारण नहीं हूं, ये कह देगा, कुछ भी नहीं छोड़ा तो भी वो कहे, उसका अभिमान होता है, क्रोध होगा उसे। भिक्षा करने जाएंगे और किसी ने कुछ कह दिया ना तो उल्टे उसको 10 बात सुना देंगे, भिक्षा इसलिए नहीं भेजा गया, गुरु जी भिक्षा के लिए किस लिए भेजते हैं, अभिमान सब दूर हो जाए, सहना सीखो, और नहीं तो उसे लड़ाई कर लिया, मारामारी कर लिया, ये अभिमान छोड़ने के लिए इसलिए कहा गया। इसलिए कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति जब होती है, प्रेम होता है, तो वो दीन ही हो जाता है, साधारण उसमें दीनता नहीं आती, प्रेम जब होगा यथार्थ तो दीनता भी यथार्थ, इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं। पार्थिव धन आदि भक्ति का विरोधी है, पार्थिव धन सांसारिक धन से उसको संग्रह मत किया जाए, इससे भक्ति की हानि होगी, विशेष करके गृहस्थों के लिए कुछ छूट है, कुछ परसेंट छूट है, कुटुंब इत्यादि का भरण पालन पोषण करने के लिए, अनाशक्ति पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कुछ संग्रह कर सकता है, किंतु त्यागियों के लिए ये सब नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा तावद भयं तन्न देह सुमित निमित्तं शोक परिभवो विपुलस्य लोभ तामन्ममिति असतवग्रहयाति मूलम् जावन्नते दंभिमभयं प्रविनीतलोक। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, उस समय देखा जी हम सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि करना माने बद्ध जीवों के लिए, जीवों का सृष्टि नहीं, बद्ध जीवों को भोगायतम शरीर स्थूल और सूक्ष्म और ये ब्रह्मांड का रूप देना, ये सब है, ये सहज नहीं है, प्रजाओं को उत्पन्न करना भी सहज नहीं। आदमी समझते हैं कि पुत्र संतति उत्पन्न करना हमारे हाथ की बात है, ब्रह्मा जी ने कहा जैसे एक लड़की पैदा हो जाए तो लड़की पैदा, और मनी से कहा जो लड़का हो तो नारद जी उनके गले से निकल आए, कोई मरीची इत्यादि मन से मरीची हो गए, सनक सनंदन सनक कुमार ये सब अजोनी पुत्र उनके, जब जैसे उन्होंने चाहा तब ऐसे सृष्टि, फिर बकरे गधे इत्यादि हो तो वो भी, जब जो चाहते हैं जैसे, और यहां का आदमी व्यक्ति गर्भ में कोई आ गई संतान तो कहते कि लड़का हो तो लड़का हो जाता है, लड़का हो नहीं हो तो लड़की हो गई, मन खराब हो जाता है, किसी को लड़का होता ही नहीं है ना लड़की, तो वो चाहते हैं कि हमको जैसे भी एक लड़की भी हो जाए, जो कोई भी हो जाए, तो वो भी तो ये जगत के लोगों के लिए संभव है, इसलिए उन्होंने तपस्या की, पहले किया गोपाल मंत्र से और पीछे से किया काम गायत्री से, इसके बाद में भगवान ने उनको दर्शन किया और दर्शन देकर के वो शक्ति संचरित। इन दोनों मंत्र का फल है भगवान में प्रेम होना, तो भगवान में प्रेम नहीं होकर के शक्ति दे, नहीं सांसारिक शक्ति किस लिए दिया, क्यों दिया, वो जो साधक है उसके अंदर में अभिलाषा क्या है, उस पर बहुत कुछ मंत्र का प्रभाव पड़ता है, है तो हरे कृष्ण ये प्रेम सूचक मंत्र है, काम गायत्री और गोपाल मंत्र भी, किंतु साधक के अंदर में कोई कामना वासना हुई तो सिंह जलपाइया उपशाखा बढ़ी जाए तो वो उपशाखा बढ़ जाता है और असल चीज रह जाता है, इसलिए वही कामना उनकी पूरी। पीछे से उनको अनुताप